नमस्कार प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आप भी आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दानियल नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है राज्यों का उत्थान एवं पतन। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। तो आइए आज के इस अध्ययन को शुरू करने से पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआस लोगों हिम्मत है यीशु।
कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआस लोगों हिम्मत है यीशु।
तो गालो यीशु नाम बन जाएंगे काम,
तो गालो यीशु
गालो ये सुनाम बन जाएंगे काम।
तो गालो ये सुनाम बन जाएंगे काम।
बोल यीशु मसीह की जय, किसी के काम न आई, इस दुनिया में सब हर जाए।
दुनिया किसी के काम न आई, इस दुनिया में सब हर जाए।
दुनिया किसी के काम न आई, इस दुनिया सब हर जाए।
दुनिया किसी के काम आई, इस दुनिया में सब हर जाए।
वो पकड़े जो हाथ छोड़ेगा न साथ,
वो पकड़े जो
है आफत मुसीबत, कितनी बुरी है दुनिया की हालत।
चारों तरफ है आफत मुसीबत, कितनी बुरी है दुनिया की हालत।
चारों तरफ है आफत मुसीबत, कितनी बुरी है दुनिया की हालत।
चारों तरफ है आफत मुसीबत, कितनी बुरी है दुनिया की हालत।
जो हो गए बेजान डालेगा वो जान,
जो हो गए बेजान डालेगा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आपके प्रतिदिन के इस वचन के सुनने के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। अपने उन नए मित्रों का भी इस कार्यक्रम में स्वागत है जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से दानिय्येल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि दानिय्येल ने दर्शन देखा और उसमें उस विचित्र प्राणी के सिर पर एक छोटा सा सिंह उगा था जिसे 3.5 वर्ष तक ईश्वर भक्तों को कष्ट देने का अधिकार दिया गया था। वह परमेश्वर और प्रभु यीशु का विरोधी और निंदक होगा और अपने आप को वह मसीह कहेगा। वह भेड़ की खाल में भेड़िया होगा। वह परमेश्वर के भक्तों को सताएगा। वह समय और व्यवस्था को बदलने का प्रयास करेगा, परंतु उसकी प्रभुता और सत्ता का अंत हो जाएगा और वह नष्ट किया जाएगा। मेरे मित्रों, दानिय्येल की पुस्तक एक भविष्यवाणी की पुस्तक है और यह अध्याय विशेष करके अंतिम समय के बातों को हमें बताता है। यह एक भविष्यवाणी है जिसमें हमने दर्शन के द्वारा से सुन और सीख रहे हैं जो अंत के समय में होगा। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगे ताकि हम उसकी बातों को समझने पाएं। हमारे प्रेमी और अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सच्चे वचन के लिए जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें समझाते और सिखाते हैं। पिता परमेश्वर, जब हम दानिय्येल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हम आपके वचन को समझकर अपने जीवन में ग्रहण करने पाए और उस अंतिम समय के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। हमारी विनती है कि आप हमारे विश्वास को बढ़ाएं। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और बीमारी में हैं। पिताजी, आप उन्हें भी अपनी शांति, अपनी दया दिखाएं ताकि वे हर एक जीवन आप में धन्य होने पाए। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे बातचीत करने जा रहे हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ दानिय्येल नबी की पुस्तक 7:26 को निकाल लीजिए। दानिय्येल की पुस्तक 7:26 में लिखा है, परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। लिखा है न्यायी बैठेंगे। यह वाक्यांश प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4:5 के स्वर्गीय दृश्य का स्मरण करवाता है जहां पर सिंहासन का दर्शन करवाया गया है। वहां मुख्य सिंहासन पर बैठा कोई है और पास में मेमना है जो न्याय करता है और उसका न्याय सब सृजित और मुक्ति प्राप्त स्वर्गिक प्राणियों को स्वीकार्य है कि पशु का वध किया जाए, उसके राज्य का दमन करके उसे दंड दिया जाए। न्यायी बैठेंगे, यह नहीं बदलेगा। मेरे मित्रों, यह न्याय महाक्लेश अर्थात महासताव के संपूर्ण समय में होगा और पृथ्वी पर राज्य की स्थापना करने के लिए प्रभु यीशु के आगमन पर पूरा होगा। इसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19:11-21 में पढ़ते हैं। इस प्रकार अन्य जातियों का समय जो नबूकदनेस्सर के साथ आरंभ हुआ था मसीह के आगमन पर समाप्त हो जाएगा। हम दानिय्येल के पुस्तक 7:27 में आगे पढ़ते हैं, तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। मेरे मित्रों, यह अनंत राज्य के संदर्भ में है जो सहस्त्र वर्षीय प्रभु राज्य से आरंभ होगा। इसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय में हम पाते हैं और अनंत काल तक यह राज्य चलेगा। कुछ लोगों का मानना है कि सहस्त्र वर्षीय राज्य उचित अनुवाद नहीं है, यह अनंतकालीन राज्य है। सच तो यह है कि सहस्त्र वर्षीय राज्य परखे जाने का समय होगा, जैसा आज का समय है, जो अंततः सदाकालीन राज होगा। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि आरंभिक कलीसियाई पित्रों में आइरेनियस ने कहा था, जब ख्रिस्त विरोधी संसार का सर्वनाश कर देगा तब वह 3.5 वर्ष राज्य करेगा और यरूशलेम के मंदिर में बैठ जाएगा। तब प्रभु यीशु स्वर्ग से बादलों में उतरेगा और पिता परमेश्वर की महिमा धारण किए हुए होगा। वह इस पुरुष को और इसके चेलों का आग की झील में डाल दिया जाएगा, परंतु धर्मियों के लिए राज्य स्थापित करेगा जिसमें विश्राम होगा और 7वें दिन पर आभा चक्र होगा, तथा वह अब्राहम और प्रतिज्ञा का उत्तराधिकारी देगा जिसमें प्रभु यीशु की घोषणा के अनुसार पूर्व और पश्चिम से अनेक लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बैठेंगे। सहस्त्र वर्षीय राज्य को मिटा डालने का और इस संसार के लिए परमेश्वर के कार्यक्रमों को यह कहकर परित्याग करना कि आरंभिक कलीसियाई पितर सहस्त्र वर्षीय राज्य के विचार को स्वीकार नहीं करते उचित नहीं है। इतिहासकार फिलिप शाप का कहना है, नायसीन युग के पूर्व के समय में अंत समय के विचार में एक ध्यान देने योग्य बात यह थी कि प्रभु यीशु महिमा में उपस्थित हो इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष राज करेगा और उसके साथ पुनरुत्थित पवित्र जन होंगे जो अंतिम पुनरुत्थान और न्याय से पूर्व होगा। यह विश्वास वचन या उपासना विधि में तो नहीं था, परंतु विशिष्ट शिक्षकों की एक आम शिक्षा थी। मैं तो कहता हूं कि आप एक अच्छी संगति में हैं यदि आप मानते हैं कि इस पृथ्वी पर सहस्त्र वर्षीय राज्य होगा, परंतु दुख की बात है कि बहुत से लोग इसे नहीं मानते। दानियल नबी की पुस्तक 7:28 में हम पढ़ते हैं, इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका, परंतु मुझ दानियल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और इस बात को मैं अपने मन में रखे रहा। ध्यान दीजिए, अंत समय के इन दर्शनों को दानियल ने अपने समय के लोगों पर प्रकट नहीं किया, क्योंकि उनका प्रभाव दानियल पर ऐसा गहरा पड़ा था कि उसका दृष्टिकोण ही बदल गया। यह उसके लिए एक सर्वथा नई बात थी। आज भविष्यवाणी जिज्ञासा और व्यर्थ ज्ञान के स्वार्थपरायण संतोष के लिए एक अध्ययन मात्र नहीं है, वरन प्रार्थना एवं सावधानी पूर्वक किया गया धर्मशास्त्र आधारित भविष्यवाणी का अध्ययन विश्वासी के जीवन पर रूपांतरण का प्रभाव डालता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 7 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 8 से जारी रखेंगे। अध्याय 8 का विषय है एक मेढ़े और एक बकरे का दर्शन। इस अध्याय में दानियल को दिया गया दर्शन भविष्यवाणी से संबंधित था, परंतु अब पूरा हो चुका है क्योंकि यह भविष्यवाणी ऐसी सिद्धता से पूरी हो गई है कि आलोचकों को अवसर मिल गया कि इस पुस्तक के लिखे जाने का समय उत्तर काल में निर्धारित करें। उनका कहना है कि भविष्यवाणी अलौकिक है और वे अलौकिक में विश्वास नहीं करते, अतः यह भविष्यवाणी दानियल ने नहीं लिखी थी। यह उत्तरकालीन ऐतिहासिक वृतांत है, यह निराधार विवाद है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि इस पुस्तक का लेखक दानियल ही था। मेरे मित्रों, दानियल के इस भविष्यवाणी संबंधित दर्शन में बड़े छोटे सिंह वाला मेढ़ा और एक सिंह वाला बकरा, द्वितीय संसार और तृतीय संसार और पूर्व एवं पश्चिम में तथा पूर्वी देशों और पश्चात देशों में परस्पर मनमुटाव का दर्शन करवाता है। यह संघर्ष मादी फारसी और यूनानी राज्यों के मध्य होने वाला संघर्ष है। इस दर्शन में एक और छोटा सिंह है जो एंटियोकस एपिफनस में पूरा हो चुका है। यह राजा यहूदियों का सबसे बड़ा सताने हारा था, जिसे यहूदी इतिहास का नीरो कहा गया है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने के योग्य है कि दानियल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 4 से 7 अध्याय के 28 पद तक अरामी भाषा में लिखा गया है, जो सीरिया की मातृभाषा थी और इन चारों महान राज्यों की प्रचलित भाषा थी। परंतु अध्याय 8 के आरंभ ही से इब्रानी भाषा काम में ली गई है। आइए हम आगे देखते हैं मेढ़े और बकरे का दर्शन। दानियल अध्याय 8 के 1 पद में लिखा है, बेलशस्सर राजा के राज्य के 3रे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। यह घटना बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के राज्य काल के 3रे वर्ष की है। वह बेबीलोन का अंतिम राजा था। अध्याय 7 का दर्शन बेलशस्सर के राज्यकाल के वर्ष में था। कहने का अर्थ यह है कि दानियल के ये दोनों दर्शन बेबीलोन साम्राज्य के अंत समय के हैं। हम आगे पढ़ते हैं दानियल 8 अध्याय के 2 पद में लिखा है, जब मैं एलाम नामक प्रांत में शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं उले नदी के किनारे पर हूँ। इस दर्शन में दानियल शूशन नामक राजगढ़ में था। यह मादी फारसी राजाओं की राजधानी थी। मादी फारसी राज्य अब अगला राज्य होगा। लिखा है, अलय नदी शूशन किले के पास बहती थी। बेबीलोन की अपेक्षा शूशन स्थान दर्शन में इसलिए है कि यह दर्शन 2रे और 3रे विश्व शासन से संबंधित है। इस दर्शन की प्रत्येक घटना 200 वर्ष में पूरी हो चुकी थी। भविष्यवाणी की यह पूर्ति ऐसी सिद्ध हुई कि आलोचकों का कहना है कि यह पुस्तक भविष्यवाणी की अपेक्षा ऐतिहासिक वृतांत है। यह उसकी व्याख्याओं को या व्याख्याओं में आड़े आने वाले चमत्कारों से मुक्ति पाने का प्रयास है। हम आगे पढ़ते हैं दानियल 8 अध्याय के 3 पद में लिखा है, फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सिंह वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सिंह बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। 2 सिंगों वाला मेढ़ा मादी फारसी राज्य का प्रतीक है। जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला, अर्थात मादी जाति का प्रतीक। सिंह पहले निकला। मादी सेनापति गबरियास द्वारा बेबीलोन पर विजय को हम देखते हैं। आगे चलकर फारसी राजाओं ने सत्ता संभाली और उस महान राज्य को विकास के शिखर पर पहुंचा दिया। अतः यह मेढ़ा मादी फारसी राज्य का प्रतीक है, जिसमें फारसियों ने वरीयता प्राप्त की थी। मेरे मित्रों, हम पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक उसके 8 अध्याय और 4 पद में लिखा है, मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सिंह मारता है और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता और न उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है, और वह अपने ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता है। ध्यान दीजिए, मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सिंह मारता है। मेरे मित्रों, वह मेढ़ा पूर्व में सिंह क्यों नहीं मारता था? फारस पूर्व में स्थित था और उसने दूर पूर्व में जाना उचित नहीं समझा। यदि वे पूर्व दिशा में बढ़ते तो भारत और चीन में प्रवेश करते। वे अपना राज्य चारों ओर फैला रहे थे। यह राज्य दानियल अध्याय 7 के रिच द्वारा दर्शाया गया है। विजय की प्रकृति उनकी प्रेरणा का स्रोत थी। मेरे मित्रों, हम आगे पढ़ते हैं दानियल 8 अध्याय के 5 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआया, और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सिंह था। अभी दानियल उस मेढ़े शक्ति और क्षमता पर आश्चर्य कर ही रहा था कि पश्चिम से एक बकरा जिसके सिर पर एक सिंह था भड़कता हुआ आया। यह बकरा यूनान का प्रतीक था। इसे हम पद 21 में भी पाते हैं, और उसका सिंह सिकंदर महान है। मेरे मित्रों, फारसी राजा शयर्स ने पश्चिम में बढ़ने का प्रयास किया था, परंतु पश्चिम से आने वाला बकरा धरती पर पांव नहीं रख रहा था। यह चीते के चार पंखों के सदृश है, और सिकंदर महान की गति का यह वर्णन करता है। आगे लिखा है दानियल 8 अध्याय उसके 6 और 7 पद में, वह उस दो सींग वाले मेढ़े के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। मैंने देखा कि वह मेढ़े के निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेढ़े को मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया, और उसका सामना करने को मेढ़े का कुछ भी वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला, और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला। यहां पर लिखा है झुंझलाया, अर्थात क्रोध में भर कर दौड़ा कि मेढ़े को मार गिराए। शयर्स फारस का अंतिम राजा था, जिसने यूरोप पर चढ़ाई की थी, 300,000 सैनिकों के साथ यूनान पर आक्रमण किया। यूनानी चतुर थे, उन्होंने उसका सामना करने की अपेक्षा थर्मोपाइले तक उनको आने दिया। वह एक सकरा दरार था जिसमें उसकी विशाल सेना समा नहीं सकती थी। एक यूनानी योद्धा लगभग 10 मादी फारसी सैनिकों के बराबर था, क्योंकि वे यूनानियों के समान प्रशिक्षित एवं अनुशासित नहीं थे। अतः थर्मोपाइले में यूनानियों की विजय हुई। फारसी सेना जब दरार में प्रवेश करने के लिए कम मात्रा में बट गई, तब उन्होंने फारसियों को घात किया। इधर सलामिस में शयर्स की सेना के 300 युद्धपोत समुद्री तूफान में नष्ट हो गए। यह समाचार पाते ही वह समुद्र तट पर गया और उसके जहाज डुबाने के लिए क्रोधित होकर समुद्र के पानी को अपने कटिबंध से पीटने लगा। मैं तो कहूंगा कि ऐसा व्यवहार एक बुद्धिमान और असाधारण व्यक्तित्व के मनुष्य पर शोभा नहीं देता है। मेरे मित्रों, यह पूर्वी राष्ट्र की पश्चिम में अंतिम युद्ध यात्रा थी। मूर की स्पेन के मार्ग से आए चार्ल्स मार्टेल ने उन्हें रोक दिया था। तुर्क भी बालकन होकर आए, परंतु विफल रहे। अब पश्चिम में एक महान युवा अगुआ उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सिकंदर महान था। जब वह 32 वर्ष का ही था तो उसकी मृत्यु हो गई। वह एक महान सेनाविद था। वह धरती पर ऐसा तेज आक्रमण करता था जैसा कभी किसी ने नहीं किया। यहां पर हम दानियल के पुस्तक उसके 7 और 8 अध्याय में देख रहे हैं कि दानियल ने अपने दर्शन को हम तक पहुंचाया है कि अंत के समय में क्या होगा। और इस अध्याय में, अर्थात 8 अध्याय में, हम देख रहे हैं कि दानियल ने एक मेढ़े और एक बकरे का दर्शन देखा, और इसके द्वारा से परमेश्वर ने हमें बताया है कि किस प्रकार अन्य राजा दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेंगे और विजयी करेंगे। मेरे प्रियो, हम समझते हैं कि यह बात सच्ची नहीं है, परंतु निश्चय ही यह ऐतिहासिक बात है। परमेश्वर के भक्तों ने इस बात को पूरा होते हुए देखा है। आज हमारे सामने जिन नामों को दिया गया है उन्हें हम भली भांति जानते हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने कार्यों को अपने तरीके से करता है और हमारे लिए भी यह चेतावनी दी गई है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, जाने और उस पर विश्वास करें, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है और इसमें से कई भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं और कुछ अभी पूरी होनी बाकी है। मेरे मित्रों, आइए आज हम इस वचन के आधार पर अपने जीवन को देखें और उन बातों को स्मरण करें कि परमेश्वर दर्शन के द्वारा से बातें करता है और एक समय था कि वह स्वप्न और दर्शन के द्वारा से अपने स्वर्गदूतों के द्वारा से बातें किया करता था। आज परमेश्वर हमसे अपने जीवित वचन के द्वारा बातें करता है और इसीलिए आज हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर के वाणी को इसके माध्यम से सुन सकें, समझ सकें और ग्रहण कर सकें। कहने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के वचन को और अधिक महत्व दें। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का भी समय समाप्त होता है, परंतु मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही नई बातों को सीखा है और परमेश्वर के वचन पर आपके विश्वास मजबूत हुए हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आत्मिक रीति से और अधिक बढ़ाए, ताकि आप सब परमेश्वर को महिमा दे सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।